Fourth candle of Advent, the candle of love. God created this world in love, and his world will end in the love of God. God's love pervades all aspects of this life, from birth to death, pain to delight, strangers to friends. God's love is there. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. A reading from the Gospel of Luke, chapter 1, verses 46 to 50. My soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior, for he has been mindful of the humble state of his servant. From now on, all generations will call me blessed, for the Mighty One has done great things for me. Holy is his name. His mercy extends to those who fear him from generation to generation. Let us pray. Santos, Santos, Santos Jesus, on this final Sunday of anticipation, help us unite with our brothers and sisters all around the world to welcome you. Humble us, soften us, and teach us joy, we pray. Come, Lord Jesus. Amen.
que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero Admirable, Omnipotente Dios, Padre Eterno, Príncipe de Paz.
Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the greatness of his government and peace, there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this.
हर वादी को भर दो, हर एक पहाड़ और पहाड़ी को हमवार बना दो, तब खुदावंद का जलाल जाहिर होगा। सब लोग इकट्ठे खुदावंद की अजमत को देखेंगे। हाँ, खुदावंद ने खुद ये सब कहा है।
Of King Herod, there was a priest named Zechariah with a wife named Elizabeth. Both of them were righteous before God, living blamelessly according to all the commandments of the Lord. But they had no children, and both were getting on in years. Once when Zechariah was serving as priest before God, he was chosen by lot to enter the sanctuary of the Lord. And there appeared to him an angel. But the angel said to him, "Do not be afraid, Zechariah, for your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear a son, and you will name him John. You will have joy and gladness, and many will rejoice at his birth, for he will be great in the sight of the Lord." Zechariah said to the angel, "How will I know that this is so? For I am an old man, and my wife is getting on in years." The angel replied,
I am Gabriel. I stand in the presence of God, and I have been sent to speak to you and to bring you this good news. But now, because you did not believe my words, you will become mute, unable to speak, until the day these things occur.
In the sixth month, the angel Gabriel was sent by God to a town in Galilee called Nazareth, to a virgin engaged to a man whose name was Joseph. The virgin's name was Mary. The angel came to her and said, "Greetings, favored one, the Lord is with you." But Mary was much perplexed by his words and pondered what sort of greeting this might be. The angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And now you will conceive in your womb and bear a son, and you will name him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High, and the Lord God will give to him the throne of his ancestor David. He will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." Mary said to the angel, "How can this be, since I am a virgin?" The angel said to her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be holy. He will be called Son of God." Then Mary said, "Here am I, the servant of the Lord. Let it be with me according to your word." Then the angel departed from her.
Thank you.
Y sucedió en aquellos días que salió un decreto de César Augusto que todo el mundo debía registrarse. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras que estaban allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: "No tengan miedo. Miren, que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre." De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: "Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los que gozan de su buena voluntad."
Oh, malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Gembala-gembala itu berkata satu ke orang yang lainnya, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka.
Sorry, Christus, sorry.
जब यीशु हेरोदीस बादशाह के अहद में यहूदिया के शहर बैतलहम में पैदा हुआ तो मशरक से कई मजूसी यरूशलम पहुंचे और पूछने लगे कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि हम मशरक में उसका सितारा देखकर उसे सजदा करने आए हैं। जब हेरोदीस बादशाह ने यह बात सुनी तो वो और उसके यरूशलम के सब लोग घबरा गए। हेरोदीस सब सरदार कहनों और कौम के उलमा और शरीयत को जमा करके उनसे पूछने लगा कि मसीह किस जगह पैदा होगा। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के शहर बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं कहा गया है, ऐ बैतलहम, तू जो यहूदा के इलाका में वाकया है, यहूदा के हाकमों में हरगिज कम तर नहीं होगा, क्योंकि तुझ में से एक ऐसा हाकम बरपा होगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। तब हेरोदीस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे कहा, उनसे सितारे के नमूदार होने का ठीक वक्त दरियाफ्त किया और उन्हें ये कहकर बैतलहम भेजा कि जाओ और उस बच्चे का ठीक ठीक पता करो, और जब वो तुम्हें मिल जाए तो मुझे भी खबर करो ताकि मैं भी जाकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और वो सितारा जो उन्हें मशरक में दिखाई दिया था उनके आगे आगे चलने लगा, यहाँ तक कि वो उस जगह पर जाकर ठहरा जहाँ वो बच्चा मौजूद था। सितारे को देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। तब वो उस घर में दाखिल हुए और बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास मौजूद पाकर उसके आगे सजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना, लुबान और मर उसकी नज़र किया, और ख्वाब में ये हदायत पाकर कि हेरोदीस के पास वापस ना जाएं, वो किसी दूसरे रास्ते अपने वतन को लौट गए।
Thank you. In the name of the Spirit, go in peace. Amen.